पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी। अध्याय एक, बदलाव की स्थितियां। कोई भी बदलाव यो ही नहीं आता, बल्कि उसके कुछ कारण होते हैं। दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण। मुख्य कारण आर्थिक ही होता है, सांस्कृतिक गौण। यह बात दूसरी है कि कभी सांस्कृतिक कारण भी प्रधान हो उठता है, पर इन दोनों को ले आने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेजों को ही है। अतः आधुनिक काल की परिवर्तमान प्रक्रिया को समझने के लिए उन समस्त कारणों का विवेचन आवश्यक है जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के फलस्वरूप प्रादुर्भूत हुए। राजनीतिक स्थिति। सन 1857 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू हो जाता है, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व उसी समय से सन 1757 ईस्वी हो जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हराया था। सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुआ। सन 1765 में कड़ा के युद्ध में उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। सम्राट ने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दी। संपूर्ण देश का अपना आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को दो और शक्तियों को पराजित करना शेष था। वे शक्तियां थी मराठे और सिख। सिख तो पंजाब की सीमा में थे, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत व्यापक था। पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण 1803 और लासवारी 1803 के युद्ध में मराठे विजित हो गए और उनकी संघ शक्ति समाप्त हो गई। 1849 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1856 में अवध की अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अपनी इस विजय के कारण अंग्रेजों का मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। उनकी नीतियों से असंतुष्ट देशी राजाओं, सिपाहियों, किसानों ने एकजुट होकर 1857 ईस्वी में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। सन 1857 के संघर्ष के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीतियों के परिवर्तन किया। इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। यह भारतेंदु के समय में हुआ, वह भी गद्य के माध्यम से। आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियां गद्य में दिखाई पड़ी, पद्य में नहीं। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। ब्रजभाषा उसके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए आधुनिक काल में ब्रजभाषा काव्य के माध्यम से पुरानी संवेदनाएं ही अभिव्यक्ति पाती रही। वह अपने संस्कारों में जड़ हो चुकी थी, उसके लिए पुरातनता का केचुल छोड़ पाना संभव नहीं था। खड़ी बोली का गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति का नया माध्यम बना। नया आर्थिक ढांचा, नए संबंध। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। अभिरुचियों और संवेदनाओं के बदलाव का सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। कुछ लोगों की दृष्टि में आर्थिक परिवर्तनों के साथ साहित्यिक परिवर्तनों का तालमेल बैठा देना ही साहित्य का इतिहास होता है। कुछ लोग संस्कृति के धरातल पर भी अभिरुचियों का विकास क्रम निर्धारित करते हैं। वस्तुतः आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में पेचीदा संबंध है। स्थूल रूप में दोनों के कारण कार्य का संबंध स्थापित करके सरलीकरण नहीं किया जा सकता। अतः साहित्य इतिहास के संदर्भ में दोनों के संबंधों और देन का विवेचन अतिरिक्त अवधानता की अपेक्षा रखता है। आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांवों का आर्थिक ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा है। गांव अपने आप में स्वतः पूर्ण आर्थिक इकाई थे। इनकी अपरिवर्तनशीलता को लक्ष्य करते हुए सर चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है, गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे, उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ। हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठों के राज्य बने और बिगड़े, पर गांव वैसे के वैसे ही बने रहे। गांव की जमीन पर सबका समान अधिकार था। किसान खेती करता था, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, गौंड, तेली आदि गांव की अन्य आवश्यकताएं पूरी करते थे। पेशा जाति के अनुसार निश्चित होता था। एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति का पेशा नहीं करता था, क्योंकि इसके लिए वह स्वतंत्र नहीं था। नगर और गांव अपनी अपनी इकाइयों में पूर्ण और एक दूसरे से असंबद्ध थे। नगर तीन तरह के थे, राजनीतिक महत्व के नगर, धार्मिक नगर और व्यापारिक नगर। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था, रत्न जटित आभूषणों, बारीकी सूती रेशमी वस्त्रों, हाथीदांत की मीनाकारी वस्त्रों की रंगाई आदि के लिए इस देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी। पर इन वस्तुओं की खपत धनी वर्ग में होती थी, विशेष रूप से राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, श्रेष्ठियों आदि में। नगरों का उद्योग सामान्य वस्तुओं का निर्माण नहीं करता था। गांव का घरेलू उद्योग अलग था और नगरों का अलग, दोनों की अलग अलग इकाइयां थी। अंग्रेज व्यापारियों ने इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के बारीक धंधों को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जो कुछ बाकी बचे थे वे नई सामाजिक व्यवस्था के कारण नष्ट हो गए। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ इस देश की सामाजिक संगठना में विघटन और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यूं अंग्रेजों की विजय की जिम्मेदारी यहाँ की स्थिर आर्थिक व्यवस्था पर ही नहीं है। अनेक जातियां उपजातियों में विभक्त देश में पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव रहा है। विदेशी मुसलमानों की विजय का कारण भी यही था और अंग्रेजों की विजय का भी। आज भी जब एक सीमा तक देश का आधुनिकीकरण हो गया है, जाति के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, नियुक्तियां होती हैं, पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर भी जाति प्रथा शिथिल तो हुई पर मिट नहीं सकी। आधुनिक साहित्य में भी इस प्रथा पर करारी चोट की गई, पर वह किताबी बनकर रह गई। आर्थिक ढांचे के परिवर्तन के साथ अधिरचना के ढांचे को भी अन्य स्तर पर मूलतः बदलने की जरूरत बनी हुई है। जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा ले आया गया वह मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संभव नहीं था। इनके आगमन के से सामाजिक रीति नीतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखाई पड़ा। मुसलमान यायावर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि से वे पिछड़े हुए थे। उनकी स्थिति पूर्व सामंतीय थी, इसलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से अंततः विजित हो गए। मुगलों के जमाने में आर्थिक सामाजिक ढांचे में स्थिरता आई, किंतु वे भी समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क नहीं ले आ सके। आर्थिक इकाइयों में यथास्थिति बनी रही। अंग्रेज सामंतीय व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे। सामाजिक विकास की दृष्टि से वे यहाँ के लोगों से एक मंजिल आगे थे, इसलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तन करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने गांव की आर्थिक व्यवस्था में जो रद्दो बदल किया उसे उनकी कृपा नहीं कहा जा सकता। इसमें इनका अपना स्वार्थ निहित था। गांव की जमीन का बंदोबस्त करने के कारण उन्हें थोड़े लोगों से ही मालगुजारी मिल जाती थी। जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ जो अंग्रेजों की आखिरी विदाई के समय तक उनकी सहायता करता रहा। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, इसका व्यापार नष्ट किया। भारतेंदु ने कविवचन सुधा मार्च 1874 में लिखा है, सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमना गमन न हो सकता था, यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी न रहा, रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य व्यय किया है उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस ने सन 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू की। बाद में बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यही व्यवस्था जारी की गई। सन 1820 में सर टॉमस मुनरो ने इस मरारी बंदोबस्त लागू करके जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया। जमींदार और जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। इसके पहले जमीन को न खरीदा जा सकता था और न बेचा जा सकता था, क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। खेत के व्यक्तिगत संपत्ति हो जाने पर खेती का व्यवसायिक हो जाना स्वाभाविक था। पहले कृषि का उत्पादन गांव में ही रह जाता था, किंतु अब बाजारों में जाने लगा। यातायात की सुविधा बढ़ने पर उत्पादन की किस्म पर भी प्रभाव पड़ा। खेतों में उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाने लगा जो व्यवसाय की दृष्टि से अधिक लाभप्रद थी। रुपए के चलन से भी व्यावसायिकता में अभिवृद्धि हुई, पर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकी। उन्हें एक और सरकारी माल गुजारी अदा करने की परेशानी रहती थी, दूसरी ओर महाजन की ऋण अदायगी की। वह बेचारा इन दो पाटों के बीच पिस रहा था। समय समय पर अंग्रेज मालगुजारी की दर बढ़ा दिया करते थे, फलस्वरूप किसान महाजनों के चंगुल में बुरी तरह फंस जाता था। महाजनी सभ्यता का ताल फैलाने का श्रेय अंग्रेजों को ही है। आए दिन अकाल भी पड़ते रहते थे। अकाल पीड़ितों की रक्षा करने में अंग्रेज अधिकार असमर्थ थे। अकाल की ज्वाला में हजारों लोग भस्मीभूत हो जाया करते थे। कर के भारी बोझ और अकाल महामारी आदि के भयंकरता का प्रचुर उल्लेख भारतेंदु तथा उनके मंडल द्वारा लिखे गए गद्य साहित्य में मिलेगा। जब भूमि व्यक्तिगत संपत्ति हो गई और उत्पादन के वितरण का ढंग बदल गया तो पुराने सामाजिक संबंधों के स्थान पर नए सामाजिक संबंध बनने लगे। सामूहिक खेती के नष्ट होने के कारण संबंधों की रागात्मकता टूटने लगी। व्यक्ति के अपने अपने स्वार्थ हो गए, इसलिए अर्थ पर टिका हुआ स्वार्थ आत्मपरक हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में घटिया स्वार्थ का जन्म होता है और यांत्रिकता के कारण जो पूंजीवादी का अगला चरण है अकेलेपन या एलियनेशन का। पहले सरल ग्राम व्यवस्था में पारस्परिक झगड़ों का निपटारा पंचायतों में हो जाता था, किंतु नई अर्थव्यवस्था के कारण पारस्परिक संबंध जटिल हो गए। अब पंचायतों द्वारा उनका फैसला नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में नई संस्थाओं का जन्म हुआ और पंचायतों के स्थान पर कचहरियां स्थापित की गई। पुरानी व्यवस्था में भी अलगाव था, किंतु वह अलगाव एक प्रकार का था और नई व्यवस्था में जो अलगाव आया वह दूसरी प्रकार का था। पहले एक गांव दूसरे गांव से और गांव शहर से अलग थे। साहित्य संस्कृति पर नागरिक संस्कृति की गहरी छाप थी। सबको एक सूत्रता प्रदान करने वाला तत्व धर्म था। यही कारण था कि भक्तिकालीन काव्य नगर और गांव को समान रूप से प्रभावित कर सका। रीतिकालीन काव्य में गांव को नफरत की निगाह से देखा गया है। इसे प्रमाणित करने के लिए बिहारी के दोहे उद्धृत किए जा सकते हैं। आधुनिक काल में गांव की ओर साहित्यकारों की दृष्टि अवश्य गई, पर तब तक किन्हीं अंशों में गांव बदल चुके थे। अंग्रेजों की नई व्यवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा। खेत अनेकानेक टुकड़ों में बट गए। किसान सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ हो गए। पैदावार घटती गई। ग्रामीण उद्योग धंधों के नष्ट होने पर अधिक से अधिक लोग खेती पर आश्रित हो गए। शहरी उद्योग भी अंग्रेजों की कृपा से काल कवलित हो गए। पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया उससे अनजाने ही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ। गांवों की जड़ता टूटी। गांव और शहर एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए बाध्य हुए। एक घेरे में बंधी हुई अर्थव्यवस्था राष्ट्रोन्मुख हो चली। जो देश केवल धार्मिक एकता में बंधा हुआ था वह राष्ट्रीय एकता के प्रति भी जागरूक होने लगा। जाति प्रथा को भी एक धक्का लगा। जाति आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, किंतु जाति प्रथा की जड़ता को तोड़ा नहीं जा सका। आर्थिक वर्गों का उदय तो हुआ, पर जातीय उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने जाने अनजाने जो सुविधाएं दी उनका उपयोग उच्च जाति के लोगों ने ही किया। अंग्रेजों के जमाने में शासन में उन्हीं का प्राधान्य था। राष्ट्रीय आंदोलन भी उन्हीं के हाथ में था। आज के राजनीतिक दलों के सूत्रधार भी वे ही हैं। साहित्य और कला पर भी इन्हीं का आधिपत्य बना रहा, इसलिए आज का एक होकर भी हम अनेक हैं। अंग्रेजों ने इस भेदभाव का लाभ उठाया, पर सारा दोष अंग्रेजों के कंधों पर लादकर हम अपने को निर्दोष नहीं कह सकते। जाति प्रथा शिथिल जरूर हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए नए आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ। उच्च वर्ग और श्रमिक के अतिरिक्त एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। आधुनिक काल में उस वर्ग की भूमिका ही सबसे अधिक क्रांतिकारी कही जाएगी। इस वर्ग के उदय का एक कारण और था, नई शिक्षा। शिक्षा का पश्चिमीकरण। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में जीवन की नई समस्याएं पैदा हुई। इन समस्याओं से जूझने के लिए नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता पड़ी। कहना न होगा कि नई शिक्षा प्रणाली द्वारा जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध हुआ उससे बहुत सहायता मिली। 18वीं शताब्दी के अंत में इस देश को जिस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आना पड़ा वह भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रकृति में ही भिन्न था। भारतीय ज्ञान गतानुगतिक और परंपरा भुक्त हो चला था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान नए जीवन संदर्भों की ताजगी लिए हुए था। भारतीय ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य आध्यात्मिक और पारलौकिक था, तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य भौतिक और लौकिक। इस देश की विद्या वर्ग या जाति विशेष तक सीमित थी, पर पाश्चात्य विद्या सर्वसुलभ थी। फिर विज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में इस देश की अभूतपूर्व प्रगति की थी। दर्शन, ज्योतिष, गणित, औषधि विज्ञान, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र, व्याकरण आदि में इसकी जोड़ का कोई अन्य देश नहीं था, पर अब इन्हीं को दोहराया जा रहा था। नई उद्भावनाओं का मार्ग अवरुद्ध हो चला था। वेदादि की आप्तता, वर्णाश्रम धर्म की श्रेष्ठता, अलौकिकता के प्रति अनासक्ति भाव यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर थे। नई परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया था। मुसलमानों में भी उसी प्रकार की गतानुगतिकता घर कर गई थी। मैकाले ने दोनों की शिक्षा पद्धतियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हिंदुओं और मुसलमानों की शिक्षा पद्धतियों में बहुत कुछ समानता थी। वे उस भाषा में शिक्षा देते थे जो जनता की भाषा नहीं थी। उनकी शिक्षा का मूल स्रोत धर्म था और उसकी आप्तता अपरिवर्तनीय थी। वे नए अभिनिवेश और परिवर्तन के विरुद्ध थे। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपने धर्म के प्रति कट्टरता की भावना ही पैदा कर सकती थी। इनके द्वारा शिक्षा पद्धति अपने धर्म के प्रति कट्टरता की भावना ही पैदा कर सकती थी। इनके द्वारा स्वतंत्र व्यक्तित्व और विवेक सम्मत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण संभव नहीं था। आधुनिक शिक्षा पद्धति का समारंभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। आधुनिक होने की दिशा में यह एक गत्यात्मक प्रयत्न माना जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रसार में मुख्यतः तीन शक्तियों का योगदान है। पहला ईसाई मिशन, दूसरा अंग्रेज सरकार और तीसरा व्यक्तिगत प्रयास। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पूर्व ईसाई मिशन दक्षिण भारत में धर्म प्रचार के कार्य में लगे हुए थे। नई शिक्षा से उनका कोई संबंध नहीं था। प्लासी युद्ध के बाद सन 1758 में डेनिश मिशन कलकत्ता आया, परंतु इसका क्रियाकलाप भी सीमित रहा। 1893 में मिशनरियों का दूसरा महत्वपूर्ण दल कलकत्ते पहुंचा। कैरे और उनके दो सहयोगियों ने, जो उस मिशन से संबद्ध थे, नए बंगाल के निर्माण में महत्व की भूमिका निभाई। बंगला गद्य की नींव डालने वाले लोगों में कैरे भी हैं। सन 1813 में कंपनी ने एक नया चार्टर स्वीकृत किया। इसके अनुसार शिक्षा आदि उपयोगी काम के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई। इस चार्टर के बाद आने वाले मिशनरियों में अलेक्जेंडर डफ का कार्य सर्वाधिक उल्लेखनीय है। कंपनी के अधिकारियों पर डफ का विशेष प्रभाव था। डफ धर्म प्रचार का कार्य अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा करना चाहता था। डफ को धर्म प्रचार के कार्य में तो सफलता प्रायः नहीं ही मिली, पर इसी बहाने अंग्रेजी शिक्षा देने वाले बहुत से स्कूल कॉलेज खुल गए। ईसाई मिशनरियों ने जो कुछ कार्य किया, उसके पीछे न तो कोई आध्यात्मिक प्रेरणा थी, न अनुग्रह की भावना। वे ईसाई धर्म प्रचार में लगे हुए थे। अपने धर्म के प्रचारार्थ उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों पर निसंकोच आक्रमण किया, उनकी निंदा की। प्रत्येक मिशन स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक अध्यापक विज्ञान और गणित पढ़ाते हुए प्रकारांतर से भारतीय धर्मों को तोड़ने में मदद करता है। पर आंकड़ों से जाहिर है कि बहुत कम लोग ईसाई धर्म की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर उसमें दीक्षित हुए। जिन लोगों ने उस धर्म को स्वीकार किया, उन लोगों को प्रेरणा देने वाले वस्तु धर्म की श्रेष्ठता नहीं, अर्थ की श्रेष्ठता थी। फिर भी मिशनरियों के अपने काम ने भी भारतीय भाषाओं को गद्य शैली दी। भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि की गद्य शैली अत्यंत आरंभिक स्थिति में थी। जनता में धर्म के प्रचारार्थ मिशनरियों को उसकी जरूरत महसूस हुई। कैरे, ब्राउन, नेवलिन, स्किनर, बैले आदि ने भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी लिखनी पड़ी। भारतीय धर्म पुराण आदि को भी उन्होंने विवरणात्मक गद्य में प्रस्तुत किया। स्त्री शिक्षा के प्रसार में भी उनका महत्वपूर्ण योग है। सरकारी प्रयास। अपनी विकृतियों के बावजूद मिशनरियों ने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। कई दृष्टियों से इसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी। इस भाषा के माध्यम से अंग्रेजी व्यापारियों से विचार विनिमय में सुविधा होती थी। अंग्रेजी जानने वाले लोगों को विदेशी फर्मों और कंपनी के प्रशासन में नौकरी पाना सरल था। 1765 से 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स को मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कलकत्ता मदरसा 1780 खोलना पड़ा। इसी प्रकार बनारस के रेजिडेंट ने सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की नींव डाली। कलकत्ते का फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 मुख्यतः कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए खोला गया, किंतु यहाँ के अध्यापकों से देसी भाषा में पाठ्य पुस्तकें, कोश और व्याकरण तैयार करने का काम भी लिया गया। इस कॉलेज की मुख्य देन यह है कि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना से अंग्रेज विद्वान प्राच्य भाषा में अभिरुचि लेने लगे। विलियम जोन्स ने संस्कृत के लिए बहुत कुछ किया, पर संस्कृत और अरबी फारसी की शिक्षा का रोजी रोटी से कोई संबंध नहीं रह गया था, इसलिए प्रगतिशील विचारक इसके पक्ष में नहीं थे। किंतु युद्धों में उलझे रहने के कारण 1823 तक कंपनी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकी। सन 1823 में कंपनी ने कलकत्ते में एक लोक शिक्षा समिति संगठित की। लोक शिक्षा के संबंध में इस समिति को सुझाव देना था। इस समिति में दो विचारधाराओं के लोग थे, एच एच विल्सन और एच टी प्रिंसप। प्राच्य भाषाओं के समर्थक थे। इन्होंने कलकत्ता के मदरसे और बनारस के संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया। 1824 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई। इस प्रेस ने से संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपने लगी, पर बेंथम के शिष्य जेम्स मिल के निर्देशन में काम करने वाले डायरेक्टर कोर्ट के लोग और ईसाई मिशनरियों में बिशप हर्बर और अलेक्जेंडर डफ जैसे व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखते हुए कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि व्याकरण की बारीकियों और वेदांत मीमांसा न्याय और कंठस्थ करने में नवयुवकों के एक दर्जन वर्ष नष्ट करना अच्छा नहीं है, इससे वे समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पर उन्हें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। सन 1834 में जब मैकाले भारत पहुंचा तो प्राच्य शिक्षा विरोधी को काफी बल मिला। मैकाले संस्कृत कॉलेज और अरबी फारसी मदरसों के विरुद्ध था। उसका सुझाव था कि इनको बंद कर दिया जाए। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा में उसने लिखा है, हमारी भाषा पश्चिमी भाषाओं में सर्वोत्तम है। जिसे इस भाषा का ज्ञान प्राप्त है उसे संसार के अपार ज्ञान भंडार की उपलब्ध हो सकती है। बहुत कुछ संभावना है कि यह पूर्व के समुद्रों की वाणिज्य भाषा बन जाए। लॉर्ड बेंटिंक ने मैकाले का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया। संस्कृत और अरबी फारसी को दिया जाने वाले अनुदान तो बंद नहीं किए गए, पर प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वह समाप्त कर दी गई और संस्कृत अरबी फारसी की पुस्तकों का छपना रोक दिया गया। ऑकलैंड को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी। उसने संस्कृत अरबी फारसी पुस्तकों का छपना जारी कर दिया, पर बेंटिंग की पाश्चात्य शिक्षा की संस्तुति उसे ज्यों की त्यों मान्य थी। इस समय दो प्रश्न प्रमुख रूप से सामने आए, शिक्षा का माध्यम और जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार। ये दोनों प्रश्न देश की संस्कृति, राजनीति और समाज के साथ व्यापक रूप से जुड़े हुए थे। शिक्षा के माध्यम के संबंध में तीन विकल्प थे। पहला यह कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, दूसरा यह कि संस्कृत अरबी फारसी हो, और तीसरा यह कि बोलचाल की भाषा बंगला, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू आदि हो। चार्ल्स ग्रांट पहले मत के समर्थक थे। मैकाले ने बोलचाल की भाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में असमर्थ घोषित किया। संस्कृत अरबी के विषय में उसने जो कुछ कहा उससे उसका अज्ञान प्रकट होता है। जो भी हो, अंग्रेजी भाषा शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार कर ली गई। बोलचाल की भाषा को शिक्षा का माध्यम न स्वीकार करने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। अंग्रेजों में भी विल्सन और शेक्सपियर जैसे व्यक्तियों ने देसी भाषाओं की उपयोगिता का समर्थन किया। शिक्षा समिति के एक भारतीय सदस्य जगन्नाथ सेठ ने 1847 में अपने विचार प्रकट करते हुए जो कुछ लिखा है वह अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञान वर्धन और उनके मस्तिष्क का परिष्कार करना है तो हमें उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है? मैं अंग्रेजी के अध्ययन को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह शिक्षा भारतीय जनता के अभिगम के बाहर है। पर अंग्रेज अधिकारियों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और अंग्रेजी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर ली गई। प्रायः दलील दी जाती है कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप देश में एकता की भावना पैदा हुई। जीवन की समस्याओं के संबंध में लोगों ने नए ढंग से सोचना आरंभ किया। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जागृत करने में इसे बहुत श्रेय दिया जाता है। प्रश्न यह है कि देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति न होती? वस्तुतः यदि अंग्रेज अधिकारियों ने देसी भाषा का माध्यम अपनाया होता तो राष्ट्रीयता की भावना और भी जल्दी उत्पन्न होती। शिक्षा के इतना अधिक फैल जाने पर भी इस देश का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। अधिकांश लोग निरक्षर और जाहिल हैं। आज ही जनता की जहालत का फायदा उठाकर कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर पढ़े लिखे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पर उस समय इस शिक्षा के माध्यम से जिस बौद्धिक मध्य वर्ग का उदय हुआ उसके आदर्श ऊंचे थे। आगे चलकर उन्होंने इसका उपयोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में किया। सन 1853 में कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण होने वाला था। ब्रिटिश संसद ने भारत में स्थायी शिक्षा नीति निर्धारित करने के सिलसिले में एक संसदीय समिति बना दी। इसके फलस्वरूप सन 1854 में वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इस घोषणा पत्र को जॉन स्टुअर्ट मिल ने तैयार किया था। इसके अनुसार जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए जिससे शिक्षा को एक सामान्य स्तर पर प्रतिष्ठित करने में सुविधा हुई। उत्तर भारत में शिक्षा। बंगाल की तरह उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हुए। पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध, आज का उत्तर प्रदेश, बहुत बाद में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। कलकत्ता विदेशी व्यापारियों का केंद्र था। व्यावसायिक फर्मों और प्रशासकीय दफ्तरों में नौकरी पाने की यहाँ सुविधा थी। बंगाल के बाहर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ईसाई मिशनरियों के साथ संबंध होने के कारण लोग अंग्रेजी शिक्षा को शंका की दृष्टि से देखते थे। बिहार में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति 1858 से पता चलता है कि पटना के स्कूल के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को वहां के लोग शैतान का दफ्तर खाना कहते थे। उत्तर प्रदेश में अनेक अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों के खोले जाने के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई। शिक्षा में पिछड़े रहने के कारण उत्तर भारत के सांस्कृतिक विकास में भी गत्यावरोध आया जिसे दूर करने में समय लगा। नवीन शिक्षा पद्धति का लेखा जोखा लगाने पर इसमें कई अंतर विरोध दिखाई पड़ते हैं। सच तो यह है कि अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए देसी बाबुओं की आवश्यकता थी जिससे उनका व्यवसाय और प्रशासन निर्बाध चल सके। ईसाई मिशनरी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई बनाकर पुण्य लूटने के चक्कर में थे। इस देश के उत्साही व्यक्तियों की दृष्टि में भी सामान्यतः रोजी रोटी का सवाल ही प्रमुख था। साम्राज्यवादियों से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे उपनिवेशों की कल्याण कामना से कोई काम करेंगे। यह कहना कि शिक्षा पद्धति के कारण ही राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ कम भ्रांतिपूर्ण नहीं है। इस शिक्षा पद्धति के अभाव में भी राष्ट्रीय भावना का उदय होता ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी? कांग्रेस की स्थापना के पूर्व उनकी रचनाओं में देश काल की अनेक समस्याएं मुखरित हुई हैं। इस शिक्षा प्रणाली के कारण छोटा सा बुद्धिजीवी मध्य वर्ग जरूर पैदा हुआ, पर अधिकांश लोग निरक्षर रह गए। फिर भी इससे एक तरह का धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण बना जो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने के कारण तर्कसम्मत और अलौकिक हो सका। व्यक्तिक स्वतंत्रता इसकी दूसरी उल्लेखनीय देन है। आश्रम धर्मी घेरेबंदी से बाहर निकलकर व्यक्ति के अपने निर्णय को अहमियत मिली। मध्यकालीन धार्मिक कथाओं को विश्वसनीय बनाने और आधुनिक युग की समस्याओं से जोड़ने के मूल में यही प्रवृत्ति क्रियाशील थी। यातायात के साधन। 19वीं शताब्दी ईस्वी में दुनिया भर में यातायात के साधनों में परिवर्तन हुआ। इस देश में भी रेल, बस, स्टीमशिप आदि ने लोगों में राष्ट्रीयता और वैचारिक एकता की भावना भरने में सहायता पहुंचाई। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास पर ही यातायात का विकास निर्भर करता है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत का आर्थिक ढांचा स्थिर और अविकसनशील था, इसलिए हमें बैलगाड़ी से अधिक की आवश्यकता भी नहीं थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण वहां के उद्योगपतियों के सामने यह समस्या हो गई कि वे अपने उत्पादन की खपत कहां करें और कारखानों के लिए कच्चा माल कहां से ले आवें। भला उन्हें भारतवर्ष से अच्छा बाजार और कहां मिल सकता था। उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से भारत में रेलवे की स्थापना और सड़क निर्माण के लिए अनुरोध किया। लॉर्ड डलहौजी, जो रेल निर्माण योजना का अगुआ था, इसके मूल में निहित आर्थिक आवश्यकताओं का उल्लेख स्वयं करता है। आर्थिक लाभ के अतिरिक्त अंग्रेजों को बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहों से अपनी रक्षा करने के लिए भी गमनागमन की ओर ध्यान देना पड़ा। रेलवे और अच्छी सड़कों की सहायता से फौजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना सुगम हो गया। जाहिर है कि इस देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए इसका आयोजन नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों के अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ही रेलवे का जाल बिछाया गया और अच्छी सड़कें निर्मित हुई। रेलों और सड़कों ने कृषि को व्यावसायिक बनाने में मदद पहुंचाई। दूरियां सिमट कर कम हो गई और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से अल्प समय में सुविधानुसार मिलने का अवसर मिला। छुआछूत, भेदभाव आदि में कमी आई। अकाल के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्न, वस्त्र आदि भेजने की सुविधा प्राप्त हुई। किताबों, पत्र पत्रिकाओं आदि को दूर दूर तक सरलता पूर्वक पहुंचाया जाने लगा। इससे पुराने संकीर्ण विचारों को तोड़ने में सहायता मिली। प्रेस और जनमत। नई अर्थव्यवस्था और शिक्षा के कारण भारतीय जनता में एक ऐसी चेतना उत्पन्न हुई जिसके आधार पर वे अपनी कठिनाइयों को समझने और उनको दूर करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए प्रेस से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता था। इसके अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय थे। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। सन 1550 में उन्होंने दो मुद्रण यंत्र मंगवाए और उनमें धार्मिक पुस्तकें छापी जाने लगी। 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में मुद्रणालय खोला गया। 18वीं शताब्दी में ही मद्रास, कलकत्ता, हुगली, बंबई आदि स्थानों में छापे खाने स्थापित हुए। कुछ अंग्रेजों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकाले, किंतु अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राजा राम मोहन राय ने ही की। सन 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन आरंभ हुआ। ताराचंद दत्त इसके संचालक और भवानी चरण बंद्योपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। इसे राजा राममोहन राय का सहयोग प्राप्त था। वे इसमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में लेख लिखा करते थे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार लिखना आरंभ किया। इससे परंपरावादी हिंदू समाज उनके विरुद्ध हो गया और इस पत्र को भी क्षति पहुंची। इसके पहले ही श्रीरामपुर मिशन के तत्वावधान में दो पत्र प्रकाशित हो रहे थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। इन पत्रों का जवाब देने के लिए उन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। फारसी भाषा में भी दो पत्र निकले, जामे जहां नुमा और मीरत उल अखबार। उनके पुरस्कर्ता भी वे ही थे। फरदून जी मुर्जबान ने बंबई में गुजराती प्रेस खोला और 1822 में बॉम्बे समाचार निकालना प्रारंभ किया। दैनिक पत्र के रूप में यह अब भी निकल रहा है। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने बंगदूत पत्र 1830 की नींव डाली। 1830 के अंत तक कलकत्ता में तीन बंगला दैनिक, एक त्रिसाप्ताहिक, दो अर्ध साप्ताहिक, सात साप्ताहिक, एक मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। 1826 में हिंदी का 1826 में हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। 1834 में कलकत्ते से ही प्रजामित्र का प्रकाशन होने लगा। हिंदी का दैनिक पत्र सुधा वर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में कलकत्ते से ही निकला। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और भी अधिक संख्या में होने लगा। इससे नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। सड़ी हुई सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का अच्छा उपयोग किया गया। इनके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों का विरोध भी शुरू हुआ जो देश हित के विरुद्ध पड़ती थी। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में काफी मदद मिली। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतवासियों में टकराहट शुरू हुई। इस संघर्ष में भी राजा राममोहन राय ने पहल की। एडम के समय में प्रेस की स्वतंत्रता पर जो आक्रमण हुआ उसके विरोध में उन्होंने अपने अन्य राष्ट्रवादी मित्रों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उन्होंने सरकार की इस कार्यवाही को अप्रजातांत्रिक अव्यवहारिक तथा प्रतिक्रियावादी बताया। रमेश चंद्र दत्त के मतानुसार संवैधानिक ढंग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के संघर्ष की यह शुरुआत थी। 1799 में वेलेजली ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, पर 1818 में हेस्टिंग्स ने प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया। 1823 में जब एडम स्थानापन्न गवर्नर जनरल था, प्रेस संबंधी अधिकार पत्र लेने का अधिनियम बना। सन 1835 में मेटकाफ ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1857 तक यही स्थिति बनी रही। मुद्रणालयों की स्थापना के कारण विचारों, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि के प्रचार प्रसार की सुविधा की ही नहीं मिली, बल्कि समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का विनिमय भी होने लगा। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। पुनर्जागरण के नेताओं ने इस माध्यम का पूरा पूरा उपयोग किया। छापे खाने का प्रभाव साहित्य के लिए भी अत्यंत हितकर सिद्ध हुआ। भारतेंदु के समय में शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार रहा हो जो किसी न किसी पत्र पत्रिका से संबद्ध न दिखाई पड़ता हो। इन पत्र पत्रिकाओं में शुद्ध साहित्य ही नहीं छपता था, बल्कि समसामयिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता था। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का अर्थ था कि दूसरों की समस्याओं में साझेदारी करना और उनको लेकर नई नई वैचारिक भूमियों को तैयार करना। इस प्रकार ये पत्र पत्रिकाएं एक ओर जहां जनतांत्रिक भावनाओं का शोषण कर रही थी, वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करती थी, करती हुई राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योग दे रही थी। मुद्रण यंत्र के कारण साहित्य में वैयक्तिकता की भावना को बल मिला। इसके पूर्व साहित्य सामान्यतः श्रुत हुआ करता था, उसके प्रशंसकों की सीमित जमात होती थी। इसलिए साहित्यकारों के लिए जरूरी था कि अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखते काव्य का एक साथ श्रवण सामूहिकता के परिवेश में ही संभव था। पर छापे खाने ने सारी स्थिति ही उलट दी। मुद्रण के कारण साहित्यकार और सामाजिक का सीधा संबंध नहीं रह गया। अब मुद्रण के माध्यम से ही वे एक दूसरे से संबंध हो पाते थे। इस माध्यम ने साहित्यकार को अवसर दिया कि वह बहुत कुछ व्यक्तिगत भी अभिव्यक्त कर सकता था। पाठकों की स्थिति भी बदली। वह मुद्रित साहित्य को एक सीमा तक वैयक्तिक स्तर पर ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र था। मुद्रणालय के आविष्कार के पूर्व साहित्य में वैयक्तिकता का समावेश अत्यल्प था, पर भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों के वैयक्तिक निबंधों में उसका सन्निवेश प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण काल के कारण अपने रूप, रंग, अभिव्यंजना, प्रभावान्विति आदि में मध्यकालीन साहित्य से पृथक और स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो गया है। आधुनिक काल के साहित्य में जो वैविध्य, वैयक्तिक कल्पना, छवियां, बौद्धिकता, प्रयोगात्मकता आई है, उनका आंशिक दायित्व छापे खाने पर भी है। छापे खाने के अभाव में परिवर्तमान अभिरुचियों और संवेदनाओं का आकलन संभव नहीं था। साहित्य और कला संबंधी वादों, आंदोलनों आदि को रूपायित करने में इसका महत्वपूर्ण योग है। भारतीय जागरण रेनेसां पश्चिम की चुनौती। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण यहाँ की अर्थनीति में बुनियादी परिवर्तन आया। इसके फलस्वरूप धर्म समाज आचार विचार की जड़ता को एक धक्का लगा। ईसाई मजहब की प्रगति के कारण हिंदुओं मुसलमानों की धर्म संस्कृति की सुरक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में धार्मिक सामाजिक परिष्कार की ओर लोगों का उन्मुख होना स्वाभाविक हो गया। आर्थिक परिवर्तन नई शिक्षा यातायात के नए साधनों के फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था वह पुराने धार्मिक संस्कारों रीति नीतियों संगठनों के मेल में नहीं था। नए यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच नए सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस सामंजस्य के साथ ही नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है। पूर्व पूंजीवादी समाज में व्यक्ति स्वातंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होता। व्यक्ति जन्म और लिंग के आधार पर एक विशेष सामाजिक व्यवस्था का अंग हो जाता है। पर नया पूंजीवादी समाज इन बंधनों से मुक्त होकर ही विकसित हो सकता है। भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र का विशेष महत्व है। ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो स्पष्ट रूप से नए परिवर्तनों को अंगीकार कर लिया था, पर आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था, किंतु इसका मतलब नहीं है कि वह वैदिक युग की रीति नीतियों में लौट जाना चाहता था। उस समय की राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में नए परिवेश के फलस्वरूप जाति प्रथा छुआछूत बाह्याडंबर आदि के विरोध में भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। मुसलमानों के प्रतिष्ठित हो जाने पर इस आंदोलन के माध्यम से सामंजस्य का प्रयास दिखाई पड़ा, किंतु नए युग में नए प्रकार के सामंजस्य की जरूरत पड़ी। मध्यकाल का सामंजस्य भावना मूलक था। उस काल के बहुत से भक्त संत अंतर विरोधों के भी शिकार थे। अब भावना से काम नहीं चल सकता था। भावना के स्थान पर तर्क विवेक और बुद्धि से काम लेना अनिवार्य हो गया था। कहना न होगा कि ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज और आर्य समाज की मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि विवेक और तर्क पर ही आधारित हैं। ब्रह्म समाज 1828 आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। आधुनिकीकरण के सिलसिले में ही उन्होंने 1772 से 1833 सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अरबी और फारसी का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था। अरबी अनुवाद के माध्यम से ही वे अफलातून अरस्तु प्लाटिनस आदि प्राचीन यूनानी विचारकों से परिचित हुए। बनारस जाकर कुछ वर्षों तक गीता उपनिषद आदि का भी गहन अध्ययन उन्होंने किया। उनकी विचारधारा पर इस्लामी एकेश्वरवाद का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ईसाई मजहब से भी वे कम प्रभावित नहीं थे। ये समस्त विचारधाराएं उन्हें पुराने औपनिषदिक दर्शन में मिल गई, विशेष रूप से तैतरीय और कौशिकी में। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का उपयोग किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने धर्म का बाह्य आडंबर माना और इसके समर्थन में जितने तर्क दिए जाते थे उनका खंडन और उपनिषदों के आधार पर किया। अंधश्रद्धा और परंपरावादिता को उन्होंने खतरनाक बताया। परंपरा में ऐसी बहुत सी चीजें जोड़ दी जाती हैं जो अविवेकपूर्ण हैं। उनके मतानुसार परंपरा का प्राचीनतम रूप शुद्ध ब्रह्म की उपासना है, न कि मूर्ति पूजा। आज से 150 वर्ष पहले वे अकेले व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। उनकी विचारधारा में तर्क की प्रधानता थी जो लॉक ह्यूम और रूसो के मेल में थी। उनका मत था कि व्यक्ति को स्वयं दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अपने तर्क की कसौटी पर कसकर खरा उतरना चाहिए। जो अंश तर्कानुमोदित न हो उन्हें अस्वीकार करना आवश्यक है। धर्म हिंदू समाज की रीढ़ है। हिंदू समाज की रचना धर्म के आधार पर ही की गई है, इसलिए धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार से अनिवार्यतः संबद्ध हो जाता है। राजा राम मोहन राय तथा अन्य धर्म सुधारकों ने इसे अच्छी तरह पहचान लिया था। अतः राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीयता विरोधी कहा। सती प्रथा के विरोध में उनका प्रयास सर्वथा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समानाधिकार का भी समर्थन किया। राजा ने पाश्चात्य संस्कृति को भी मूल्यवान समझा, इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में उचित योग भी दिया। उस समय के ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों की उन्होंने प्रशंसा की। वस्तुतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने जो कुछ किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील ही कहा जाएगा। ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। देवेंद्रनाथ वेदों की ओर अपरुषेयता पर विश्वास नहीं करते थे, उनकी आस्था अंतःप्रज्ञा पर अधिक थी। केशव चंद्र सेन बहुत कुछ प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्म धर्म के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप मद्रास में वेद समाज और बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे राजा राममोहन राय की तार्किकता और बौद्धिकता तक ही अपने को सीमित न रख करके वैष्णवों के भजन कीर्तन की ओर आकृष्ट हुए। ईसाई धर्म की ओर भी वे अधिकाधिक झुकते गए। केशव के कारण समाज में दो बार फूट पड़ी और दोनों बार उन्होंने अलग संस्थाएं स्थापित की, साधारण ब्रह्म समाज और नव वेदांत। केशव के बाद ब्रह्म समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शिक्षित समाज को प्रभावित करता। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी। सन 1864 में बंबई और पूना में केशव चंद्र सेन का आगमन हुआ। उनके प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। वे 19वीं शताब्दी में चोटी के बुद्धिजीवी, विधिवेत्ता और मेधावी व्यक्ति थे। देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसकी ओर उनकी दृष्टि न गई हो। वे 40 वर्षों तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया। उन्हें हिंदू होने का गर्व था और वे भागवत धर्म के अनुयायी थे। वे संकीर्ण विचारधारा को कभी भी प्रश्रय नहीं देते थे। वे प्रगति विकास के विश्वासी थे। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया। मध्यकालीन मराठा संतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईश्वर को सार्वभौम और सृष्टा मानते थे। आत्मा की अमरता में उन्हें विश्वास था, पर वे अपने विचारों में कहीं भी प्रतिक्रियावादी नहीं हैं और न तो उनमें कोई पूर्वग्रह भी ही है। अतीत के प्रति उनके मन में आदर था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अतीत को उसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। पुराने आचार विचार और संस्थाओं को उनके मूल रूप में पुनः स्थापित करने वाले पुनरुत्थानवादियों से वे अनेक प्रश्न पूछते हैं। हम किस चीज का पुनरुत्थान करें? क्या हम अपने पूर्वजों के पशु तुल्य भोजन और सुरापान को पुनरुत्थापित करें? क्या हम 12 प्रकार के पुत्र और 8 प्रकार के विवाहों को पुनः शुरू करें? क्या पशु यज्ञ या मानव बलि का पुनरारंभ किया जाए? क्या सती प्रथा को पुनः जारी करना चाहिए? क्या आज भी जगन्नाथ के रथ से कुचल कर मर जाना श्रेयस्कर घोषित करना चाहिए? रानाडे अतीत के मृतत्व को मृत मानकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मृत अतीत को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता। समाज जीवित अवयवों का संगठन है, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इस प्रक्रिया के बंद हो जाने पर समाज मुर्दा हो जाएगा। रानाडे ने जिस एक सुधार पर बार बार जोर दिया है वह है मनुष्य की समानता। वे जाति पाति की प्रथा के विरुद्ध और अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बार बार बल दिया है। उनका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्क पद्धति और सामाजिक परिष्कार के प्रति अभिरुचि आदि से स्पष्ट है कि वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु पाश्चात्य मत को भी उन्होंने बिना वितर्क के स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि वे भी भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। रामकृष्ण मिशन 1897। रामकृष्ण परमहंस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में परमहंस थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि इस गरीब, अपढ़, गवार, रोगी, अर्धमूर्ति पूजक मित्रहीन हिंदू भक्त ने बंगाल को पूरी तरह हिला दिया। उनके योग्य शिष्य विवेकानंद ने उन्हें बाहर से भक्त और भीतर से ज्ञानी कहा है। स्वयं विवेकानंद के संबंध में ठीक उसका उल्टा कहा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की सन 1897 में स्थापना की। 1893 में विश्व धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए वे शिकागो गए। उनकी वक्तृता से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा था, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस महान देश के धार्मिक मिशनों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। विश्व विजय करने के बाद इस देश में उनका अत्यंत भव्य स्वागत हुआ। यद्यपि उनका मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था, फिर भी सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। माननीय समता के विश्वासी होने के कारण उन्होंने जाति संप्रदाय छुआछूत आदि का विरोध किया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। उन्होंने कहा है, पूजा के सभी उपकरणों को फेंक दो, शंख घंटा घड़ियाल दीप को प्रतिमा के सम्मुख डाल दो। वैयक्तिक मुक्ति के लिए की गई साधना, शास्त्रों के अध्ययन का अहंकार छोड़ दो। गांव गांव जाओ और गरीबों की सेवा में अपने को निछावर कर दो। आगे शिक्षित तथा उच्च वर्ग की भर्त्सना करते हुए उन्होंने लिखा है, जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूंगा। गरीबों के पैसे से पढ़कर भी वे उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भारत को केवल जनता से आशा करनी चाहिए। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है। धर्म वह है जो शारीरिक बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने में सहायता करे। धर्मगत ध्यान आदि व्यक्ति को प्रमादी और निष्क्रिय बनाता है, तो उसे त्याग देना चाहिए। तुम्हारे रामकृष्ण की चिंता कौन करता है? तुम्हारी भक्ति और मुक्ति को कौन देखता है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों की परवाह किससे है? अगर मैं अपने देशवासियों को कर्म योग में दीक्षित कर सकूं और इसके लिए मुझे हजारों बार नरक जाना पड़े तो मुझे प्रसन्नता होगी। विवेकानंद ने हीनता की भावना से ग्रस्त देश को यह अनुभव कराया कि इस देश की संस्कृति अब भी अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है। इस देश का आध्यात्मिक चिंतन असमानांतर है। आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य मनुष्य की समता, एकता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। पश्चिम की भौतिकता से चमत्कृत देशवासियों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी अपनी परंपरा में भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें दुनिया के सामने गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। आर्य समाज 1867। गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव था। इन प्रदेशों का मिजाज बंगाल से भिन्न है। बंगाल की भावुकता के स्थान पर उन्हें पौरुष और अखंडता अधिक प्रिय है। बंगाल और महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में मध्यकालीन संतों की वाणी का भी योगदान है, पर आर्य समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। सन 1867 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद असाधारण व्यक्ति थे। वे संस्कृत के चोटी के विद्वान, वाग्मी और अत्यंत मेधावी थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय दृढ़ और असमझौतावादी था। उनके विचार में कहीं भी अस्पष्टता और रहस्यवादिता नहीं मिलेगी। विवेकानंद को छोड़कर इतना अटूट आत्मविश्वास अन्यत्र नहीं दिखाई देगा। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार माना। वे वेदों को शाख और अपुरुषेय मानते थे। वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वभौम है, दूसरे धर्म अधूरे हैं। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि अन्य धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करे। आर्य समाज ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए एक आचार संहिता बनाई। इसमें जाति भेद, मनुष्य मनुष्य या स्त्री पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। निश्चय ही यह एक लोकतांत्रिक दृष्टि थी। वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के बावजूद वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। समाज की भौतिक उन्नति के लिए वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आवश्यक समझते थे। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलकर प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर दयानंद स्कूल कॉलेज खोले गए। अपने हिंदूवादी दृष्टिकोण के बावजूद आर्य समाज ने राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में आश्चर्यजनक योगदान किया। कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने के लिए भरपूर चेष्टा करती रही। द टाइम्स की ओर से 1907 के बाद होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों की जांच करने के लिए एक प्रतिनिधि आया था। उसने आर्य समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे अधिक खतरनाक तत्व बतलाया। उत्तर भारत के आचार विचार, रहन सहन, साहित्य, संस्कृति पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। गद्य की भाषा के परिष्कार में भी इस आंदोलन का अभूतपूर्व योग है। छुआछूत पर जितना प्रबल आघात इस आंदोलन ने किया, उतना और किसी अन्य ने नहीं किया। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आंदोलन उच्च और उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहे, पर आर्य समाज का प्रसार मुख्यतः मध्य वर्ग के बीच हुआ, इसलिए इसका कार्य अधिक क्रांतिकारी सिद्ध हो सका। आर्य समाज के कार्य एक ओर प्रगतिशील तो थे तो दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी। जहां तक मानवीय समता, अस्पृश्यता आदि का संबंध है, इसे प्रगतिशील माना जाएगा, किंतु मुसलमानों के प्रति इसका आक्रामक रुख प्रतिगामी प्रवृत्ति का सूचक है। वेद को अपौरुषेय और अतर्क्य मान लेने के कारण मुक्त व्यक्तिगत चिंतन के लिए इसमें अवकाश नहीं रह गया। थियोसोफी 1875। थियोसोफिकल आंदोलन भारतीय धार्मिक परंपरा पर ही आधारित था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मदाम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में सन 1875 में हुई। सोसाइटी के संस्थापक जनवरी 1879 में भारतवर्ष पहुंचे। 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में इसकी शाखा खोल दी गई। श्रीमती एनी बेसेंट सन 1888 में इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबद्ध हो गई। 1893 में वे भारत आई और सोसाइटी के विकास में तन मन से जुट गई। उन्होंने घोषित किया, मैं अपने विगत के संस्कारों के कारण हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। अपने गत्यात्मक व्यक्तित्व और असाधारण वक्तृत्व शक्ति के कारण उन्होंने अनेक शिक्षित भारतीयों को आकृष्ट किया। श्रीमती बेसेंट ने समस्त देश का दौरा किया और हिंदू धर्म के आध्यात्मिकता के पक्ष में ओजस्वी भाषण दिए। थियोसोफी में उन्होंने अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए शिक्षा संस्थाएं भी खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी तरह का कॉलेज था। इस आंदोलन के कारण उदारता और समन्वयवादी दृष्टि का विकास हुआ, किंतु यह बहुत कुछ उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। प्रतिक्रियाएं। बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों के विरुद्ध पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियाएं आरंभ हुई। बंगाल में राधाकांत देव ने राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा 1830 की स्थापना की, पर 57 के विद्रोह तक वह समाज का प्रभाव कम नहीं कर सकी, किंतु 57 के विद्रोह के बाद सुधारवादी रेडिकल्स का जोर कम हो गया और पुरातनवादी मनोवृत्तियां उभर कर सामने आई। 1858 में के अनंतर बंगाल में दो प्रवृत्तियों का ज्यादा जोर था, राष्ट्रीयतावादी और स्वच्छंदतावादी। दोनों के मूल में व्यक्तिकता, अतीत के प्रति गौरव का भाव, विदेशी सत्ता के विरुद्ध आक्रोश, गांव की बढ़ती हुई गरीबी के प्रति सहानुभूति, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आग्रह आदि क्रियाशील थे। अतीत के गौरव के प्रति जागृति फैलाने का श्रेय उन पुरातत्ववेत्ताओं और पुरालेखविदों के मुद्रा शास्त्रियों को है जिन्होंने विस्मृति के गर्भ में विलीन हो भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला आदि का पुनरुद्धार किया। इसके फलस्वरूप संसार में भारत का गौरव बढ़ा और इस देश के निवासियों में आत्मसम्मान का भाव जाग उठा। अब पाश्चात्य संस्कृति के सामने डटकर खड़ा हुआ जा सकता है। नवीन हिंदुवादी वाद का जन्म हुआ। इसमें मुख्यतः दो दल थे, एक प्रत्येक प्रकार के सुधार का विरोधी था, दूसरा यथास्थान नए विचारों के सन्निवेश का पक्षपाती था। किंतु मुख्य धारा में यह किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तन का आकांक्षी नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे ही व्यक्ति थे, वे गीता के निष्काम कर्मयोग के हिमायती थे। उन्होंने धर्म तत्व पर 2 जिल्दों में पुस्तकें लिखी, कृष्ण के संबंध में कृष्ण चरित्र ग्रंथ लिखा। वे धर्म सुधारकों की भांति टुकड़ों टुकड़ों में समाज सुधार के हिमायती नहीं थे। उनका विश्वास था कि धर्म और नैतिकता के समग्र पुनर्जागरण में ही समाज सुधार समाविष्ट हो जाता है। बंकिम के विचारों और उपन्यासों में देश प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा था। वे देश प्रेम को धर्म और धर्म को देश प्रेम कहते थे। महाराष्ट्र की स्थिति बंगाल से भिन्न थी। एक तो वह अंग्रेजों के अधिकार में बंगाल से 60 वर्ष पीछे आया और दूसरे पेशवा राज्य की परिसमाप्ति का दर्द उसे बना हुआ था। अपनी परंपराओं के प्रति उसे अधिक अनुराग था। महाराष्ट्र ने देश की गरीबी भूखमरी आदि का पूरा दायित्व अंग्रेजी राज्य पर डाल दिया। चिपलूणकर के निबंधों में देश के पराभव का एकमात्र जिम्मेवार विदेशी शासन को ठहराया गया। तिलक ने रानाडे के सुधारों का विरोध किया। उनकी दृष्टि में इन सुधारों से समाज विभक्त होगा और इससे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में बाधा पहुंचेगी। जनता को एक करने के लिए उन्होंने गणेश पूजा की शुरुआत की। उत्तर भारत में आर्य समाज के विरोध में सनातन धर्मावलंबियों ने अपना स्वर बुलंद किया। इन विरोधी स्वरों के कारण सुधार का कार्य तो मंद पड़ा, किंतु राष्ट्रीयता को और अधिक बल मिला। मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर। यद्यपि अंग्रेजों ने इस देश में नई अर्थव्यवस्था, औद्योगिकता, संचार सुविधा, प्रेस आदि को अपने निजी स्वार्थों के लिए स्थापित किया, फिर भी इससे इस देश का हित हुआ। एक स्थिर व्यवस्था से छूटकर देश को नूतन गत्यात्मकता का अनुभव हुआ। परंपराएं टूटने लगी। नए परिवेश में ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप लोग अपने को नए ढंग से ढालने लगे। आधुनिक काल में जिस पुनर्जागरण का उल्लेख किया जाता है, उसके मूल में भी ये बदली हुई परिस्थितियां ही थी। इसके पूर्व धर्म मुख्यतः पारलौकिक आकांक्षाओं से संबद्ध था, किंतु आधुनिक काल में वह अलौकिक आकांक्षाओं का भी वाहक बना। पूंजीवादी समाज की भौतिकता के फलस्वरूप धर्म सुधारकों को इस तरह का बाना धारण करना पड़ा था, या कहिए कि इसके लिए इन्हें बाध्य होना पड़ा। भारतीय धर्म और संस्कृति के संबंध में अंग्रेज प्रशासकों को ईसाई मिशनरियों के आक्रामक रुख के कारण धर्म सुधारकों को धारदार मार्ग से गुजरना आवश्यक हो गया। एक ओर उन्हें विदेशियों के समक्ष अपनी धर्म संस्कृति की वकालत करनी पड़ी और दूसरी ओर देशवासियों के सामने धर्म का नया अर्थापन करना पड़ा। इस प्रकार हर बात को तर्कसंगत बनाने की दिशा में जो पहल की गई वह बहुत फलदायक सिद्ध हुई। इस संक्रांति काल में धर्म का पल्ला पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि धर्म अनिवार्यतः समाज सुधार के साथ जुड़ा हुआ था। पुराण पंथी और सुधारक दोनों ने अपने अपने मत के प्रचारार्थ धर्मशास्त्रों की शरण ली। इस युग में राजा राममोहन राय अकेले व्यक्ति थे जिन्हें शुद्ध बुद्धिवादी कहा जा सकता है। सती प्रथा को उन्मूलित करने के लिए उन्हें भी धर्मशास्त्रों की गवाही की आवश्यकता हुई। विद्यासागर ने सिद्ध किया कि धर्मशास्त्रों में वैधव्य का कोई विधान नहीं है। दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधारों को वैधता देने के लिए वेदों की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने अपने मत के पुष्ट्यर्थ वेदों का नया अर्थ भी किया। धीरे धीरे तर्क की संगति पर विशेष बल दिया जाने लगा। इससे रूढ़ियों को उच्छिन्न करने में सुविधा हुई। परंपरावादी धर्म सुधारक दोनों ही अतीत के गौरव को जागृत करने में सफल हुए। इससे भारतीयों को आत्मसम्मान का बोध हुआ और बराबरी के स्तर पर पश्चिम का सामना करने तथा स्वतंत्रता की मांग करने का आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। यद्यपि वे परंपरावादी धर्म सुधार में बहुत आस्था नहीं रखते थे, फिर भी राष्ट्रीयता पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रीयता में सभी सुधार समाविष्ट हैं। वस्तुतः जिन्हें परंपरावादी कहा जाता है और जिस अर्थ में कहा जाता है, उस अर्थ में वे परंपरावादी नहीं थे। रेडिकल भी पूरे तौर पर रेडिकल नहीं थे। परंपरा पर नैरंतर्य को देखते हुए समस्या केवल चुनाव को लेकर खड़ी होती है परंपरा की निरंतरता में कुछ अंश नए युग के प्रसंग में सार्थक होते हैं और कुछ अर्थहीन। परंपरा की प्रासंगिकता किस तत्व में है और किस में नहीं, इसका विवेचन और चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा कथित परंपरावादी और रेडिकल दोनों के मूलभूत दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं था, फिर भी दोनों के अभिगम अलग अलग थे। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में दोनों ने विश्वास व्यक्त किया और नई शिक्षा संस्थाएं खोली। शिक्षा संस्थाएं तो पहले भी थी, पर इन शिक्षा संस्थाओं का रूप एकदम बदल गया। इनका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित करना था। नए अर्थतंत्र, शिक्षा प्रणाली, संचार जाल आदि के कारण पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। बहुत से लोग इसे पश्चिमीकरण न कहकर आधुनिकीकरण कहते हैं। पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग बहुत संगत नहीं है, क्योंकि स्वयं पश्चिम को बहुत सी बातें पूर्व से मालूम हुई हैं। जैसे मुद्रण यंत्र का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। पश्चिमीकरण से भ्रम होता कि पश्चिमी रीति नीति, आचार व्यवहार, वेशभूषा आदि का अंधानुकरण आधुनिकीकरण एक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक विचारधारा से बनता है और वह मूलतः इस लोक से ही संबद्ध होता है। एम एन श्रीनिवास ने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक में लिखा है, भारतीयों को केवल स्याही शोक का दर्जा देना तो स्पष्ट ही वाहियात है। यह कहना ठीक नहीं कि जिस किसी बात के संपर्क में वे आए वह सब उन्होंने आत्मसात किया, उसे दूसरों तक संप्रेषित कर दिया। यद्यपि कुछ एक व्यक्तियों के साथ निस्संदेह ऐसा हुआ, वास्तव में पश्चिम से कुछ बातें ग्रहण की गई और ग्रहण की गई बातों में भी रूपांतर हुआ। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में पश्चिमी विचारक में मिल बेंथम, कामते आदि से बहुत कुछ प्रेरणा ली गई, किंतु इसके लिए शास्त्रों के साथ साथ मध्यकालीन संतों की वाणियों का भी सहारा लिया गया। छुआछूत, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष के भेद आदि का विरोध हुआ। स्वतंत्रता, समानता आदि का समर्थन इस तथ्य का सूचक है कि इस समय तक नवीन मानवतावाद का आविर्भाव हो चुका था। संस्कृत के शास्त्रों और मध्यकालीन संतों भक्तों की वाणियों में भी एक प्रकार का मानवतावाद मिलता है, पर वह मानवतावाद सर्वत्र ईश्वरवाद से संदर्भित है। कबीर हिंदू मुसलमान के भेद पर यह कहकर प्रहार करते हैं कि वे सभी ईश्वर की संतान हैं। कर्मकांड की निंदा वे इसलिए करते हैं कि वह ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं। भक्तों में तुलसी की स्पष्टोक्ति है, नाते सबै राम के मानियत। पर आधुनिक युग में मनुष्य मनुष्य की समता, स्वतंत्रता आदि को सामाजिक न्याय के आधार पर समर्थित किया गया। पर इन आंदोलनों में से अधिकांश में एक अंतर विरोध दिखाई पड़ता है। इनके आदर्शों और व्यवहारों में सर्वत्र एक रूपता नहीं मिलती। टैगोर परिवार ब्रह्म था। ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है, पर टैगोर परिवार खूब धूमधाम के साथ दुर्गोत्सव मनाता था। आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा मानी जाती थी, लेकिन आर्य समाजियों में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित करने में संकोच का अनुभव न करते रहे हों। दूसरा अंतर विरोध यह था कि राजा राम मोहन राय, रानाडे आदि बहुत से लोग अंग्रेजी राज्य को देश के लिए वरदान समझते थे, लेकिन उनके दोहन, शोषण आदि का विरोध करते थे। समाज में एक ओर संस्कृतिकरण बढ़ रहा था और दूसरी ओर लौकिकीकरण। इस अंतर विरोध से गुजर करके आधुनिक काल का स्वरूप निखरा। संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति। नई परिस्थिति और परिवेश के कारण साहित्य, संगीत और कला को भी संकट का सामना करना पड़ा। उनको आश्रय देने वाले केंद्र तेजी से टूटने लगे थे। कला संगीत तो विशेष घरानों से संबद्ध हुआ करते थे। ये घराने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रक्षा में संलग्न रहा करते थे। इन घरानों के संरक्षण का दायित्व सामंत वर्ग पर था। मध्यकाल में भक्त कवियों के अतिरिक्त अकबर, जहांगीर, मानसिंह, तोमर आदि ने संगीत को प्रश्रय दिया। उनके दरबारों में अनेक कलावंत रहते थे। तानसेन अकबरी दरबार का ही संगीतज्ञ था।
मानसिंह ने गुजरी टोड़ी, मंगल गुजरी, ध्रुपद आदि को नवाविष्कृत किया। मुगल सल्तनत के समाप्त होने पर संगीत की मौलिकता समाप्त हो गई। वह छोटे मोटे सामंतों के आश्रय में किसी प्रकार सांस लेता रहा। पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में जो कुछ शेष था वह भी समाप्त हो गया, पर भारतीय पुनर्जागरण के फलस्वरूप रवि बाबू ने नए संगीत की कल्पना की, जिसमें पूर्व और पश्चिम के स्वरों का मिश्रण था। इसे रावींद्रिक संगीत की संज्ञा दी गई। सन 1919 में अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना हुई। अब भारतीय संगीत के पुनरुद्धार का कार्य आरंभ हुआ। इस कार्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग विष्णु नारायण भातखंडे का है। आधुनिक काल में कुछ दिनों तक भारतीय चित्रकला पश्चिम का अनुकरण करती रही, पर पश्चिम के ढंग से जिन तैल चित्रों पर निर्माण किया गया वे अपनी अभिव्यक्ति में मध्यकालीन थे। त्रावंकोर के राजा रवि वर्मा के चित्रों की विषय वस्तु भी पौराणिक और धार्मिक थी। उनके चित्रों की रूपरेखा सुनिर्मित, वर्ण योजना चटक पूर्ण और आकर्षक थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में रवि वर्मा के अनेक चित्रों को प्रकाशित किया, पर 1856 में कलकत्ता आर्ट स्कूल की स्थापना के साथ ही भारतीय चित्रकला में नया मोड़ आता है। ई.बी. हैवेल इसके अध्यक्ष थे। आगे चलकर हैवेल अवनींद्रनाथ ठाकुर तथा आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्र शैली को नया रूप दिया, जो मूलतः इस देश की होती हुई भी आधुनिक जीवन दृष्टि से अनुप्राणित थी। सन 1907 में गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। इन प्रयत्नों का फल यह हुआ कि भारतीय चित्र शैली का एक स्वतंत्र रूप निर्मित हुआ। चित्र शैली में भी बंगाल ने पहल की। इसके माध्यम से अपनी चित्र परंपरा को नए संदर्भों में पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। भारतीय नवजागरण की ही अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से हुई। नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, संवत 1922 में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंगदेश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगाल में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक उपन्यास आदि देखे, और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संभव है वे बंगला साहित्य से अनुप्रेरित हुए हों, किंतु दूसरे साहित्य के आदर्श पर अपने वास्तविक साहित्य का निर्माण नहीं होता। अपने युग की संवेदनाओं को आत्मसात करके ही भारतेंदु ने नए ढंग की साहित्य रचना का समारंभ किया। नई आर्थिक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा, जीवन पद्धति के कारण इस देश की अपनी पहचान खो गई थी, पर इस अवरोध ने ही यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग को नए सिरे से अपनी पहचान करने के लिए बाध्य किया। यह पहचान नवीन और प्राचीन के अंतर विरोध में की गई। इसे दूसरे शब्दों में पश्चिमीकरण और भारतीयकरण का विरोध भी कहा जा सकता है। इन दोनों की रस्साकसी काफी दिनों तक चलती रही। नवजागरण के अग्रदूतों ने पश्चिमीकरण के विवेक सम्मत परिवेश में अपनी संस्कृति को नए ढंग से संगठित करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत को सामने रखकर अपने को पुनः गौरवान्वित अनुभव किया और देश में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस रूप दिया। आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य अपने को पहचानने तथा पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है। अतीत के गौरव को इस देश की सभी भाषाओं में अभिव्यक्त किया गया। इस गौरव के मूल में पुनरुत्थानवाद, रिवाइवलिज्म न होकर नवीन जागरण ही क्रियाशील था। यदि कहीं पर इस पुनरुत्थानवाद की ध्वनि सुनाई भी पड़े तो कालांतर में समाप्त हो गई। राष्ट्रीयता इस काल का दूसरा प्रमुख स्वर था। सन 1947 तक इसमें कहीं भी शिथिलता नहीं दिखाई पड़ती। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात यह स्वर आत्मालोचन में बदल गया, किंतु 1960 के आसपास आधुनिकता का जो प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा उससे साहित्यिक प्रगति की दिशा बदल गई। आधुनिकता, हिंदी साहित्य का पिछला दशक 1960 से 70 आधुनिकता से विशेष प्रभावित है। आधुनिक और आधुनिकता में अंतर है। आधुनिक मध्यकालीन से अलग होने की सूचना देता है, आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगीकरण का परिणाम है, जबकि आधुनिकता और औद्योगीकरण की अतिशयता, महानगरी एक रास्ता, दो महायुद्धों की विभीषिका का फल है। वस्तुतः नवीन ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम मानवीय स्थितियों के नए गैर रोमांटिक और अमिथकीय साक्षात्कार का नाम आधुनिकता है। एक समय तक अलौकिक होकर आधुनिक दृष्टि प्रगतिशील बनी रही। प्रत्येक देश में पुनर्जागरण रेनेसा आया। बहुत से परतंत्र देश स्वतंत्र हुए। अपने अपने सपने लेकर उन्होंने अपने ढंग की सरकारें बनाई। एक बिंदु पर खड़े होकर मनुष्य ने पाया कि जिस औद्योगिकरण और प्रविधिकरण के सहारे उसने पूरे देश का सपना देखा था, वह साकार नहीं हो सका। सरकारें स्थिर व्यवस्था में बदल गई। लोकतंत्र तथा साम्यवादी सरकारें समान रूप से निराशाजनक सिद्ध हुई। व्यक्ति या तो व्यवस्था का पुर्जा हो गया या प्रविधि का। उसका अपना व्यक्तित्व और पहचान खो गई। इस खोए हुए व्यक्तित्व की खोज प्रक्रिया का नाम आधुनिकता है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धिसम्मत बना दिया था। नीत्से की इस घोषणा से कि ईश्वर मर गया, बौद्धिक जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यथार्थ का स्वरूप ही बदल गया। पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छे बुरे की जो कसौटियां धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी, उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। पुराने मूल्य विघटित हो गए। मनुष्य ने जो पाया कि वर्तमान परिस्थितियां वे में वह असहाय क्षुद्र और निरर्थक प्राणी है। विज्ञान की प्रगति में भी निश्चयतावादी सिद्धांत को खोखला सिद्ध कर दिया। फ्रैंक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षतावाद से सिद्ध हो गया कि न तो कोई सार्वभौम सत्य होता है और न शाश्वत नैतिकता। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अणु शक्ति में बदल जाता है और शक्ति अणु में। निश्चयात्मकता की समाप्ति की अंतिम घोषणा हो गई। अस्तित्ववादी दर्शन ने इस पर अपनी मुहर लगा कर इसे और भी पुष्ट कर दिया। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। उसने अपने को ठोस अनुभवों तथा प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। वे बुनियादी सवाल हैं व्यक्ति की व्यग्रता, दुख, निराशा, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रास आदि। इसके साथ ही वह सामूहिकतावाद और निश्चयवाद के विरुद्ध भी खड़ा हुआ। वह उन समस्त विचारों के विरुद्ध है जो व्यक्ति को अमनुष्य और अस्तित्वहीन बनाते हैं। उसकी दृष्टि में मनुष्य स्वतंत्र है। वह न वस्तु है न मशीन है, वह क्रियात्मक शक्ति है। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ है और इसके लिए खुद जिम्मेदार है। किर्केगार्ड, हेडगर, जेस्पर्स, मार्सेल, सार्त्र आदि के अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव आधुनिक पश्चिमी साहित्य पर खूब पड़ा है। आधुनिक चित्रकला भी इससे कम प्रभावित नहीं है। सेजा, वान गोग, पिकासो आदि पर इनका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। आधुनिकतावादी साहित्य एक विशेष प्रकार का साहित्य है। समसामयिकता का संबंध काल से है और आधुनिकता का संवेदना शैली और रूप से। यह स्थापित संस्कृति मूल्य और संवेदना को अस्वीकार करती है। यह दुनिया की मान्यताओं को मंजूर नहीं करती, परंपरा को बेड़ी के रूप में लेती है। आधुनिकतावादी अंतरयात्रा करता है, मूल्यों का मखौल उड़ाता है, वह विद्रोही होता है। भीड़ का विरोध करता है, वह व्यक्ति की मुक्ति का विश्वासी है। वह अपने को अमानव की स्थिति में पाता है और स्नेह, कृतज्ञता आदि को निष्कासित कर देता है। संयम की कमी, प्रयोग, साहित्य रूपों की तोड़फोड़, शौक देने की मनोवृत्ति, आक्रोश, क्षोभ, हिंसा की आकांक्षा आदि इसकी विशेषताएं या मोटिफ हैं। सातवें दशक के हिंदी साहित्य में अकविता में अकहानी, अनाटक, अउपन्यास की जो चर्चाएं हुई, चर्चाएं कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इन्होंने आंदोलन का रूप नहीं लिया। अत्यंत अल्पकाल के लिए अकविता का एक आंदोलन चला, पर वह शीघ्र ही काल के गाल में समा गया। उनके आधार पर लिखा गया साहित्य आज के अनिश्चय, व्यर्थता, अकेलेपन, अजनबियत, आत्मनिर्वासन आदि को व्यक्त करता है। यह साहित्य अपने रूप संवेदना में किस दर्जे का है, यह अलग बात है। आधुनिकता का यह बोध एक वास्तविकता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस देश में इसे ले आने की बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारी भ्रष्टाचारी लोकतंत्र को है, पर 8वें दशक के आरंभ में हमारे साहित्यकारों में इससे छुटकारा पाने की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी है। सबसे पहले यह बोध कविता में दिखाई पड़ा। इन रचनाओं को नव वामपंथी रचनाएं कहा जा सकता है। वस्तुतः नव वामपंथी आंदोलन न्यू लेफ्ट मूवमेंट का अनुवाद है। अपने देश में इसका जन साम्यवादी दल के पारस्परिक विरोध और विघटन के कारण हुआ। इसे अधिक रेडिकल समझकर नए साहित्यकार भी इस ओर उन्मुख हुए। इन रचनाओं में अधिकांश सूडो नव वामपंथी हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास दृढ़ आदर्श हैं, पर राजनीतिक दृष्टि से वे शोर शराबा के इर्द गिर्द अधिक चक्कर काटते हैं। इन लोगों ने कुछ अर्थवान रचनाएं दी हैं, पर इनके अपने निश्चित मुहावरे बन गए हैं। इसलिए डर है कि तथ्य बनने के पहले आधुनिकतावादी निहिलिस्टों की तरह ये इतिहास की वस्तु न बन जाए। उत्तर आधुनिकता। इधर कुछ अरसे से पश्चिम में उत्तर आधुनिकतावाद की चर्चा हो रही थी। पुस्तकें निकल रही थी, गोष्ठियां आयोजित की जा रही थी, किंतु सोवियत संघ के बिखराव के ठीक बाद उत्तर आधुनिकता पर हिंदी में बहस शुरू हो गई है। क्या यह आकस्मिक है या संघ के बिखराव के बाद एक स्वप्न टूटा है, एक अनिश्चयता की स्थिति आई है। उत्तर आधुनिकता की दो विशेषताएं हैं, दिशाहीनता और उपभोक्तावादी समाज का उदय और सुखवाद का चरम विस्तार। प्रगति के प्रत्यय को आधुनिकतावादियों ने पहले ही मिथक कह दिया था, पर अनिश्चय का धुंधलका इतना घनीभूत नहीं हुआ था। ज्योति की चिंगारियां जहां तहां दिखाई पड़ जाती थी। सोवियत संघ का विघटन उत्तर आधुनिकतावाद का एक सशक्त उपलक्षण है। उसके पराभव के मूल में उपभोक्तावाद के साथ उसके तालमेल का न बैठना है। संचार माध्यमों ने सिद्ध कर दिया है कि आज का समाज दूरदर्शन की माप के बाहर नहीं है। सुपरमार्केट का स्थान स्वतंत्र बाजार फ्री मार्केट ले रहा है। बाजार में रंग बिरंग माल की ढेर लगी है, वहां केवल क्रय का सुख प्राप्त होता है। इसमें दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अद्भुत युग आया है, न कोई तारतमिकता, न किसी विचार के प्रति आस्था, स्वयं आस्था में भी आस्था नहीं। उस द्वंद्वात्मकता का कहीं पता नहीं जो इतिहास के गंतव्य का निर्णय करती थी। निरंध्र तार्किकता में भी अतार्किकता ने अपनी जगह बना ली है। सर्वत्र अनेकांतता है, अनिश्चयता है, अस्पष्टता है, अनित्यता है। कोई सत्यान्वेषण का दावा नहीं कर सकता। इतिहास एक अंतहीन छद्म क्रीड़ा का नाटक हो गया है। वह एक फूहड़ राजनीति का शिकार हो चुका है, एक दिशाहीन चक्राकार यात्रा। यह समृद्ध समाज की नई मंजिल है, यह एक मंजिल है। मुक्त बाजार के संघर्ष और निर्धन व्यक्तियों का एक बहुत बड़े वर्ग के असंतोष को उत्तर आधुनिकता के नाम पर सदा के लिए दबाया नहीं जा सकता। साठोत्तरी साहित्य में विशेष रूप से 8वें दशक पर उत्तर आधुनिकतावाद की ध्वनि न सही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। इस प्रकार अध्याय एक बदलाव की स्थितियां यहीं पर समाप्त।